मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 25 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और आज का हमारा यह विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इनफैक्ट सच पूछिए तो मैंने यह शीर्षक दिया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लेकिन मैं इस पर स्ट्रेट तरीके से बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूं कि यह कब लागू हुआ और इसके क्या उद्देश्य हैं और इसके क्या क्या प्रावधान हैं। देखिए, इस बीमा योजना को लागू किए हुए काफी वक्त हो चुका है, लगभग डेढ़ पौने दो साल हो चुके हैं और इस बीच में अखबारों में इसके बारे में काफी कुछ आया है, पत्रिकाओं में भी काफी कुछ इसके बारे में बातें थी और उनसे आप परिचित होंगे ही, और अगर आप उनसे परिचित नहीं हो तो डेफिनेटली एक बार आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो प्रावधान हैं, 2016 में इसे लागू किया गया था, अप्रैल 2016 में, तो एक बार आप उन्हें देख लें, समझ लें, क्योंकि उनको समझने के बाद ही आप मेरे इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इनफैक्ट सच पूछे तो मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अब तक जो स्टडीज हुई हैं, जिन कमियों के का उल्लेख किया गया है, मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। आप यूं कह लीजिए कि एक समीक्षा जैसी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन कौन सी कमियां हैं, उनके बारे में क्या किया जाना चाहिए। मित्रों, यह बताना अब जरूरी नहीं रह गया है कि जो भारतीय किसान है, इनफैक्ट सही मायने में कितने दबावों में है। आप देख रहे हैं कि उसके जो दबाव हैं वो अलग अलग रूपों में हमारे सामने आ रहे हैं, दुखद रूपों से लेकर के और आर्थिक विपन्नता तक की स्थिति। किसानों के आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, बहुत ही दुर्भाग्यजनक पक्ष है। आप देखिए कि नए लोग खेती किसानी के काम को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। छोड़िए, नए लोगों का स्वीकार करना तो अलग बात है, बल्कि ये आंकड़े यहां तक कह रहे हैं कि रोजाना लगभग 2500 किसान खेती बाड़ी के काम को छोड़ रहे हैं, अपने इस काम को ही छोड़ करके कोई दूसरा काम कर रहे हैं। आप किसी भी किसान से जाकर के बात कीजिए, न तो अपने काम से खुद खुश है और चाहता यह है कि उनके बच्चे इस काम को न करें, कुछ और काम कर लें। न तो खुद करना चाहता है और न ही अपने बच्चों से कराना चाहता है, क्योंकि कुल मिलाकर के अब यह बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि जो कृषि है आर्थिक रूप से फायदे का काम नहीं रह गया है। आर्थिक रूप से दोस्तों, इस एक आंकड़ा है हम सबके सामने जो सिद्ध करता है कि वास्तव में जो किसान है उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, कि हमारी जो टोटल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो टोटल जो हमारा राष्ट्रीय उत्पादन, घरेलू उत्पादन है, उसमें सोचिए कि कृषि का जो योगदान है घटते घटते अब 14% रह गया, 14% रह गया, 14-15% अलग अलग आंकड़े हमको मिलते हैं। चलिए हम बीज का आंकड़ा ले लेते हैं, लगभग 15% रह गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 15% भी बहुत है हम मान लेते हैं, बशर्ते कि यह 15% का कंट्रीब्यूशन 15-20% की आबादी के द्वारा किया गया होता तब तो ठीक था, कोई बात नहीं है, बाकी लोग कहीं और कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, चाहे वो सर्विस सेक्टर में कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर रहे हो। लेकिन मुश्किल ये है भारतीय अर्थव्यवस्था की कि अभी भी 57% पॉपुलेशन कृषि से जुड़ी हुई है और ये 57% पॉपुलेशन का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में, दैट इज 15%। तो ये जो आंकड़ा है ये दिखा रहा है कि ये जो 57% जो किसान है इनकी आय कितनी होगी, क्योंकि आय के अनुपात में ही तो वो योगदान करेंगे ना। दोस्तों, इसके बारे में लगातार बातें हो रही हैं, कोशिश हो रही है, अभी भी जो सरकार है आपने देखा है कि कह रही है कि 2022 तक हम किसानों की जो आय है वो दुगनी कर देंगे, और उसके लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से पशुपालन की सुविधाएं दी जाएं, किस तरह से उनके जो जमीन की उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाई जाए, उर्वरक के कारण हमारी जमीन बहुत ये कह लीजिए कि ऊसर हो रही है, कैसे उस पर नियंत्रण रखा जाए, अलग अलग उपाय, तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। सच पूछे तो उन्हीं तरह तरह के उपायों में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट उपाय था वो था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए, फसल बीमा योजना होने से किसानों को सबसे बड़ा फायदा क्या होता, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए मैं एक थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि आप देखिए कि कैसे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। बाढ़ आई, फसल बर्बाद हो गई, कीटों का प्रकोप हुआ, फसल बर्बाद हो गई, ये सारी बातें आप अखबारों में पढ़ते होंगे। वर्षा नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई, और जब फसल बर्बाद हो गई तो किसान बर्बाद हो गया, क्योंकि अब जो फसल है हमारी वो पहले जैसी नहीं रह गई है। मतलब मैं अगर अपने समय की बात करूं 1970-75 के आसपास में जब खेती होती थी, तब किसान अपने ही साधनों से खेती करता था, और अगर फसल बर्बाद भी हो गई तो नो डाउट कि उसका जीवन तो बहुत कठिन हो जाता था, लेकिन वो कर्जदार नहीं बनता था उतना। दूसरी चीजों की छोटे मोटे कर्ज जो घर के खर्चे चलाने के लिए चाहिए तो उतना वो बर्दाश्त कर लेता था, अगले साल उसको चुका देगा जब फसल ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तो खेती खुद अपने आप में एक निवेश बन चुका है। आपको बीज खरीदने हैं, आपको खाद खरीदना है, आपको कीटनाशक दवाइयां खरीदनी है, सारी चीजें आपको खरीदनी है, तो खेती भी अब लागत की मांग करने लगी है। तो अब किसानों के सामने जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है कि फसल बर्बाद होने का मतलब है लागत तक का बर्बाद हो जाना और कर्जदार बन जाना। अब वो क्या करे, ऐसी स्थिति में ही वो आत्महत्या करने जैसे कदम उठाता है, क्योंकि उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सोचा गया कि अगर इनके फसल का बीमा कर दिया जाए तो कम से कम वो जो कर्जदार बन गया है उसकी जो लागत है वो तो वापस आ जाएगी, और इससे किसानों को में बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, किसान खेती भी करने लगेंगे, उत्साहित भी होंगे, उनको एक प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। जब जीवन का बीमा हो सकता है, घर का बीमा हो सकता है, गाड़ी का बीमा हो सकता है, तो कृषि का बीमा क्यों नहीं हो सकता। अब ये बात अलग है कि कृषि का बीमा गाड़ी और घर के बीमा की तरह आसान नहीं है, क्योंकि इनमें तो जो नुकसान होता है उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, आप खेती के नुकसान का मूल्यांकन कैसे करेंगे, कितनी लागत आई और कितना उसमें नुकसान हुआ, तो ये सारी जटिलताएं थोड़ी सी हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से पश्चिमी राष्ट्र हैं जो इसे कर रहे हैं, तो भारत में भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, पहले भी बीमा योजना थी लेकिन वो उतनी कारगर नहीं हुई थी, उसको उसमें थोड़ी सी सुधार करके और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप्रैल 2016 में शुरू की गई। लेकिन अब तक इसके जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। उसमें ये देखने में आ रहा है कि ये फसल बीमा योजना किसानों को प्रोटेक्ट करने में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर पा रही है। उसका कारण है कि इसके लागू करने में और किसानों को मुआवजा मिलने में जो जटिलताएं हैं, इसका पूरा का पूरा जो सिस्टम बनाया गया है वो कुछ इस तरीके का है कि बहुत से मामलों में एक तो आपस के जो एजेंसियां हैं उनमें टसल होने लगे हैं, किसानों की समझ से बाहर की चीजें होने लगी हैं, और बड़ी बात यह है कि लोग इसे जो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वही इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और एक तरीके से ये बीमा कंपनियों के लिए फिर से फायदे का सौदा हो गया, व्यापार हो गया, उनको किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही कह लीजिए कि चौंकाने वाला तथ्य है। तो मित्रों, इन सब बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है, तो आइए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं जो सर्वे में या कह लीजिए कि जो इस अध्ययन में हमारे सामने आए हैं कि इसमें क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स समस्याएं पैदा हो रही हैं। एक तो यह है फ्रेंड्स कि ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों को जो बीमा कंपनियां हैं इनको बहुत सब्सिडी मिल रही है। किसान जब बीमा कराते हैं तो किसान अपनी बीमा का पैसा तो दे देते हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता, बाकी की जो भरपाई है वो सरकार के द्वारा की जाती है, तो उनको काफी सब्सिडी मिल रही है, और साथ ही साथ जो प्रीमियम दिया जा रहा है उस प्रीमियम में भी उनको बहुत बड़ी हिस्सेदारी उनको मिलती है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी प्रीमियम से भी मिल रहा है उनको पैसा, बीमा कंपनियों को सब्सिडी से भी मिल रहा है। और अभी तक ये देखा गया है कि जो कंपनियां प्रीमियम का भुगतान करती हैं, यानी कि जब फसल नष्ट हो गई और बदले में जब किसानों को उनके नष्ट हुए फसल का भुगतान किया जाता है, दैट इज हार्डली 25%। मतलब किसानों को ज्यादा भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो आप कल्पना करके देखिए कि अगर 100 रुपए बीमा कंपनी को टोटल मिल रहे हैं सब्सिडी और प्रीमियम के रूप में, तो उसे सिर्फ 25 रुपए ही किसानों को लौटाने पड़ रहे हैं बीमा के प्रीमियम, बीमा के भुगतान के रूप में 75 रुपए का फायदा हो रहा है। इसका मतलब है कि ये बीमा कंपनियों के लिए तो स्वर्ग का द्वार है, लेकिन किसानों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं। और मित्रों, इसके अध्ययन करने के बाद जो हमारे सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है, इसने इस कमी की तरफ बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से कहा भी है कि आप इन चीजों को ठीक कीजिए। यह नहीं कि यह कोई हवा की बात है या किसी ने ऐसे ही ब्लेम कर दिया है या किसी विपक्ष दल ने यह बात कही है, बकायदे एक एजेंसी ने यह बात कही है जो अपने आप में बहुत विश्वसनीय एजेंसी है। बकायदे उन्होंने कहा है सीएजी ने कि इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है और वो सुधार किए जाने चाहिए। और बहुत ही चेतावनीपूर्ण शब्द में भी उसने ये बात कही है, क्योंकि फ्रेंड्स सच पूछे तो, मतलब व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी यही लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, यही इकलौती ऐसी योजना है जो किसानों को सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है, या यूं कह लीजिए कि सुरक्षा दिला सकती है, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है, दूसरी और कोई योजना नहीं है। और अगर इसी योजना को अच्छे से लागू कर दिया जाए तो भारतीय कृषि का जो परिदृश्य है, जो सिनेरियो है, वो एकदम से बदल जाएगा। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि इसमें फसल की बुआई से लेकर, बुआई से जो दिक्कतें होती हैं उससे लेकर के कटाई तक की सुरक्षा की व्यवस्था है, जब तक कि वो अनाज उनके घर में नहीं आ जाता। मतलब अगर कटी हुई फसल भी नष्ट हो जाती है तो उसके विरुद्ध भी सुरक्षा प्रोवाइड किया गया फसल बीमा योजना में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। किसानों को और क्या चाहिए, अगर इतनी सिक्योरिटी उन्हें मिल जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब आप देखिए कि फ्रेंड्स कि किस तरह के सुधार किए जाने चाहिए, उस पर आइए हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। पहली तो बात यही कही जाती है कि इसका नाम तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो इससे यह इम्प्रेशन पड़ता है कि ये पूरी तरह से केंद्रीय सरकार की योजना है, यानी कि इसमें जो भी पैसा लगेगा, जो भी प्रीमियम देना होगा, सब्सिडी देनी होगी, वो केंद्र सरकार ही देगी। जबकि सच्चाई ये है फ्रेंड्स कि ये 50-50 योजना है, केंद्र सरकार आधा पैसा देती है और आधा जो खर्चा है वो राज्यों को देना होता है। अब आप देखिए कि जहां राज्यों को देने की बात आ गई, अब इंप्लीमेंट कौन करेगा, राज्य करेगा, इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी राज्य की है, अब उनको 50% देना पड़ रहा है। तो यह पाया गया है कि राज्य इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि उनको 50% देना पड़ रहा है, तो इसका ना तो प्रचार प्रसार करेंगे, इनफैक्ट वो चाहते ही नहीं है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बीमा योजना में आए, फसल बीमा योजना में आए, क्योंकि राज्यों की जो अपनी आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो इस पर धन लगा सकें। तो ऐसे में मतलब आप सोच करके देखिए कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि राज्य रुचि न दिखाए ऐसी योजनाओं में, और यही हो रहा है कि राज्य बहुत रुचि नहीं दिखा रहे हैं, और यहां तक कि अगर थोड़ी बहुत रुचि भी दिखाते हैं तो वो जो उनको भुगतान करना चाहिए वो सही समय पर भुगतान नहीं करते, उसको वो टालते रहते हैं। फिर इस बीमा योजना की का एक प्रोविजन है कि जो आप फसल के नुकसान का जो आकलन करेंगे कि किसान को कितना नुकसान हुआ है, वो कटाई के आधार पर करेंगे, कि फसल जब कटेगी उसके आधार पर करेंगे। जब कटाई के आधार पर आप करते हैं तो उसमें ज्यादा मेहनत पड़ती है, ज्यादा खर्च करना पड़ता है, राज्य मेहनत नहीं करना चाहते, राज्य खर्च भी नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, आकलन कैसे करते हैं, क्योंकि आकलन तो करना है, तो पता लगा कि गए फसल देख लिए, अच्छा फसल खड़ी है तो अनुमान लगा लिया, आंख से देख करके अनुमान लगा लिया कि अच्छा इतने का नुकसान हुआ होगा, बात खत्म हो गई। तो उसमें एक्चुअल अनुमान नहीं लगता है, और आप देख सब समझ सकते हैं कि अनुमान लगाने वाले जो लोग होंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार तो सब तरफ है, वहां क्या हालत होती होगी। तो उससे भी किसान का जो सही नुकसान है वो उसकी भरपाई नहीं हो पाती, और फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास ना तो कोई उनके बहुत अच्छे आंकड़े हैं, ना जो दावे किए जाते हैं उनका कोई तुरंत निपटान होता है, और ना ही जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाता है। जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप ले लीजिए कि ड्रोन है, उससे आप फोटोग्राफ ले लीजिए जिस जो फसल नुकसान हुआ उसका, उसका भी उपयोग नहीं किया जाता। स्मार्टफोन से चित्र ले लीजिए और उसके आधार पर कोई मूल्यांकन कीजिए। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है नुकसान के आकलन के लिए, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके बाद मित्रों, जब वो प्रीमियम का भुगतान होता है राइट, उसमें अब बैंकों को भी साझेदार बना दिया गया है। तो अब आप देखें कि तीन एजेंसी हो गई, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और बैंक। अब होता यह है कि किसानों का सीधा संबंध बैंक से है नहीं। किसान को बैंक से क्या लेना देना, कुछ नहीं, वो तो पैसे दे देता है, बैंक से उसको कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी को पैसे दे देता है। तो अब किसानों के पास को सही तरीके से जो उसने प्रीमियम दिया हुआ है और जो बीमा कराया हुआ है, उसकी न तो रसीद मिल पाती है, न कोई बीमा के दस्तावेज मिल पाते हैं। और सच पूछे तो हर्जाने के रूप में जब किसानों को पैसा मिलता भी है तो कहां मिलता है, वो बैंक में मिलता है, और उसी बैंक से किसान कर्ज लिए हुए रहता है। तो वो बैंक अपने तरीके से उस कर्ज में उसे एडजस्ट कर लेते हैं, उसे एडजस्ट कर लेते हैं, किसानों को कुछ नहीं मिल पाता। और बैंकों की लगातार और बीमा कंपनियों की भी लगातार ये शिकायत है कि उनके पास किसानों की जो जमीन है, कितनी जमीन है, किस तरीके की जमीन है, इसके बारे में कोई सही रिकॉर्ड नहीं मिल पाता, कोई जानकारी नहीं मिल पाती, ताकि वो उसका सही सही तरीके से अनुमान लगा सके, मूल्यांकन कर सके और योजना बना सके। जमीनों के रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे हुए हैं, वास्तविक कितनी जमीन पर खेती हो रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको सही ढंग से लागू करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मित्रों, इसके उपाय के रूप में जो सुझाया जाता है वो ये कहा जाता है कि चूंकि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इस योजना को पूरी तरीके से केंद्रीय सरकार की योजना बना दे, तभी शायद बड़े किसानों को तो हो सकता है कि अभी भी फायदा हो रहा हो, लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो मार्जिनल फार्मर हैं, जो जिन्हें हम सीमांत किसान कहते हैं, वह भी इसका फायदा उठा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एनालिसिस के बारे में बताए हैं, कुछ तत्व दिए हैं, इन पर थोड़ा सा आप विचार करें। और मुझे लगता है कि केवल इसी डेली ऑडियो लेक्चर में जो मैंने थोड़ी सी बातें बताई हैं, इसके आधार पर आपका यह प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही मैं इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।